ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल 11 वर्षों की यात्रा पर विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए विरासत और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं संस्कृति मंत्रालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NEZCC के निदेशक डॉ. प्रसन्ना गोगोई, कला संस्कृति विशेषज्ञ प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी और पत्रकार रघुवर शरण। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह।
भारत का स्वरूप क्या है, शरीर क्या है, ये विष्णु पुराण का एक श्लोक हमें बताता है जो कहता है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। अर्थात भारत वो जो हिमालय से हिंद महासागर तक की सभी विविधताओं और विशेषताओं को समेटे हुए है और उसकी हर संतान भारतीय है। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है।
भारत एक ऐसा प्राचीन देश जहां विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हुई। भारत जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। हमारी विरासत की गाथा हमारे देश की कला और संस्कृति में निहित है। भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले एक दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवन परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा के साथ नई दिशा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थयात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया गया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियां और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। पिछले 11 साल में कला संस्कृति के क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक डॉ. प्रसन्ना गोगोई, कला संस्कृति और साहित्य के विशेषज्ञ, साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉ. राजीव रंजन गिरी और वरिष्ठ पत्रकार रघुवर शरण। डॉ. प्रसन्ना, आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पिछले 11 सालों में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से देखते हैं।
विश्व के सभी लोग जानते हैं भारत एक कला संस्कृति के देश है जहाँ हर क्षेत्र के विभिन्न कला संस्कृति यहाँ आपको देखने मिलते हैं। तो भारत को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। हमारे जो 11 साल में काफी कुछ नया इंक्लूड हुआ है, इसमें से आ गया अभी कुंभ मेले हो गया, राम महोत्सव हो गया, अभी माधवपुर गेट जो हुआ है। कला संस्कृति का जो है तो ये बहुत बड़ा एक फेस्टिव ओकेजन जो भारत के पहले था लेकिन इतना बड़ी पैमाने पे नहीं था। अभी 11 साल में तो बहुत कुछ अभी फेस्टिवल्स हो रहे हैं जो भारत की कला संस्कृति को लोगों को खाली हमारे भारतीय लोगों को ही नहीं, देश विदेश के काफी लोग को जानने को मिले कि भारत की संस्कृति, भारत की कला क्या है।
बात करना चाहेंगे प्रोफेसर राजीव रंजन जी से और आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 11 सालों में कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं।
मोदी सरकार के पिछले 11 साल को अलग अलग मोर्चों पर जिन चीजों के लिए याद रखा जाएगा उसमें कला और संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण उसका आयाम है। यह सरकार 2047 तक जो विकसित भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रही है, पिछले 11 साल में उसको फलीभूत करने की जो पूरी कोशिश की है उसका एक महत्वपूर्ण अंग संस्कृति है। पिछले 10,000 वर्षों से अधिक की हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण करना, इसके अंतर्गत 300 से अधिक मूर्तियों को या कला से जुड़ी हुई विभिन्न चीजों को जो दुनिया के अलग अलग स्थानों में भारत की थी उनको वापस लाने की कोशिश सरकार ने की है और उसमें सफलता भी पाई है। हम अपने ऐतिहासिक स्थलों को, स्वदेशी कलाओं को और भारत की पारंपरिक हुनर को, प्रथाओं को संरक्षित करें ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी अपने देश के स्वर्णिम अतीत के साथ जुड़ सकें और उससे सीख भी सकें, उसके साथ रागात्मक संबंध भी स्थापित कर सकें। सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर बल दिया है और उसमें बड़े हद तक सफलता भी प्राप्त की है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थलों का पुनरुद्धार का काम भी है, जिसमें उज्जैन, काशी, अयोध्या जैसे स्थलों को जो हमारे अतीत और हमारे इतिहास, हमारे जीवन का एक अंग था, उसको विश्व के मानचित्र पर मजबूती के साथ रेखांकित कराने का काम किया है। भारत से जुड़े हुए योग, संगीत, शास्त्रीय कलाओं, परंपराओं को दुनिया के विभिन्न मंचों से उठाकर और उसको यथा स्थान स्थापित कराने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी का एक रूप था। जब हमारे यहाँ G20 समागम हुआ था तो भारत की सांस्कृतिक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया गया, उसको दिखाया गया। आयुष जो हमारे यहाँ की इलाज पद्धति थी और हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी, उसने करीब 35 देशों में लगभग 40 केंद्रों की स्थापना की है आयुर्वेद का, और हम 150 के आसपास देशों में हमने आयुर्वेद दिवस मनाने की कोशिश की है। तो ये सारी ऐसी उपलब्धियां हैं इस सरकार की जिस पर कोई भी नागरिक गर्व और गौरव कर सकता है।
जी डॉक्टर प्रसन्ना, बतौर निदेशक आप न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कलाकारों के साथ आप जाते रहे हैं, कार्यक्रम देते रहे हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे युवा लोग किस तरीके से भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके कार्यक्रमों के साथ, NEZCC जैसे संस्थाओं के साथ उनसे जुड़ रहे हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी प्रोत्साहन योजना भी है जिससे और युवा इससे जुड़ सकें?
हाँ, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा काफी सारे स्कीम्स है जो हमारे नए युवाओं, नई पीढ़ी को पहले छोटे से ही देते, जैसे CCRT स्कॉलरशिप है 9 साल से 14 साल तक है, फिर यंग आर्टिस्ट है, फिर आप इस स्कॉलरशिप से जो हमारे कला है, परिवेश कला है वो हमारे विजुअल आर्ट से उसमें देते हैं, काफी सारे देते हैं। तो इसमें से फिर आप फेलोशिप कर सकते हैं, जैसे कुछ जैसे हमारे जो विलुप्त कला है, जो वेनिसिंग आर्ट फॉर्म्स है, वेनिसिंग आर्ट फॉर्म्स को हम लोग कैसे जिंदा रख सकते हैं। तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन फिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स ये भी हम लोग करते हैं। फिर हमारे टैगोर फेलोशिप्स है, जहाँ टैगोर फेलोशिप बड़े बड़े हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो काफी अलग अलग क्षेत्र में उन लोग काम कर सकते हैं। तो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे काफी सारे स्कीम्स है जो हमारे नए युवा, नए पीढ़ी जो हमारे भारत के कला संस्कृति को जिंदा रखने में उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए मौका दिया जाता है।
पिछले 11 सालों में हम देख रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत सारे नए अवसर आए हैं, तो उनका कला और संस्कृति के प्रति जो रुझान है वो कैसे बढ़ा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में जिस तरह से महोत्सव और कार्यक्रम हो रहे हैं, कला और संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
हाल ही में जो कोविड हो गया था, आपको मालूम है, इसमें हमारे युवा, हमारे स्कूल के बच्चे लोग काफी थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे। तो इनके लिए भारत सरकार ने कला उत्सव तैयार किया है जो हम हर प्रांत के हर स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो अपने कला को दिखा सकते हैं। तो इसमें से एक कम्पिटिटिव कंपटीशन होता है हमारे इंडिया लेवल पे, तो ये एक मौका है। दूसरे मौका क्या है, हमारे लोगों के बीच में जो हमारे नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कलाकार लोग पश्चिम की तरफ परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उत्तर की तरफ परफॉर्मेंस करते हैं भारत के, तो लोग फिर हमारे पूर्वोत्तर को देखने के लिए भारत के अन्य प्रांत से लोग आते हैं। तो ये एक कल्चरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जिसमें से जो हमारे जीवन शैली के बारे में काफी लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ उत्तर पूर्व के लोग कैसे हमारे जीते हैं, कैसे खाते हैं, इनकी जीवन शैली क्या है। हमारे उत्तर पूर्व के जितने भी लोग है वो बाहर जाके, जैसे आप गुजरात में गए होंगे, साउथ इंडिया में गए, तो वहां के जीवन शैली के बारे में जानने लग गए हैं। तो ये भारत में अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता कि हमारे जितने भी कला है, जितने भी हर कला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही हमारा आइडेंटिटी है। और हमको इनको जिंदा रखने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से हर प्रयास करते हैं कि हमारे नई पीढ़ी को पढ़ाई के साथ साथ हमारी कला संस्कृति को कैसे जिंदा रखे और इनको किस प्रकार से इनके लिए थोड़ा सा बड़े बड़े फेस्टिवल में इनको फिर इनका भी योगदान देते हैं। तो यही है हमारा खासियत है कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा हमारे काफी कल्चरल प्रोग्राम से वो खाली भारत के लिए नहीं विश्व दरबार में अभी फैला रहे हैं। हमारे नए पीढ़ी, नए जनरेशन और आने वाले जनरेशन के लिए भी हम लोग काफी डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर चुके हैं, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, ये काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन आने वाले पीढ़ी के लिए हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कर चुके हैं।
डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है हमारी जनरेशन को?
देखिए, अगर एक कलाकार की आयु कितने होते हैं, इनके साथ अगर ऐसे कुछ कला है जो वो शेयर खाली दिखाने से नहीं होंगे, इसको लिखित रूप से, इसको विजुअली, उनको फोटोग्राफिक रूप से, या उनका कोई इंटरव्यू लेके अगर रख लेते हैं, डिजिटलाइज कर देते हैं, तो ये सालों साल तक रहेंगे कि ये इतने 100 साल हो, 200 साल तक लोग इनके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। अभी देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट में टैटो था, टैटो आर्ट फॉर्म जो था, जो बॉडी में ये करते हैं, तो ये अभी खत्म होने लग गया। तो लोग इसके ऊपर भी रिसर्च करने लग गए कि टैटो क्यों बनाते थे लोग पहले, उनका महत्व क्या है। तो अभी लोग काफी विदेश के लोग आके इनके ऊपर रिसर्च करने लग गए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य बजाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करने लग गए। तो हम ये जो डिजिटाइजेशन करते हैं, जितने भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ये हमारे लिए नहीं, हम जिंदा है, हम देख ले, लेकिन अब 50 साल के, 100 साल के बाद ये लोग नहीं रहेंगे, तो इनका जो कला है, इनका जिंदा रखने के लिए ही डिजिटाइजेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है।
नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है। केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है।
रघुवर जी, आप तो अयोध्या से हैं, आपने जिस तरह का काम देखा, वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, भारतवासियों का एक सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सके, और जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, सब चीजों को आपने कवर किया है, किस तरीके से देखते हैं इसे?
एक सपने के साकार होने जैसा है, किसी तरह से एक मंदिर का ही निर्माण उनके लिए हो जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह बहुत ही भव्यता से, बहुत विचार पूर्वक मंदिर का निर्माण, राम मंदिर राम लला के साथ साथ राम दरबार से भी युक्त हो चला है, जिसमें राम के साथ माता सीता और भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी भी हैं। तो लोगों में बहुत ही इस बात को लेकर उनमें बहुत ही उल्लास है, जोश भी है कि उनकी वाली हो रही है, वो जो सोच रहे थे वो सही था, उनकी आस्था सही थी, तो इसलिए वो बड़े जोश में भी हैं।
जी, तो राम मंदिर के निर्माण से हम देखें तो पूरे देशवासियों का एक सपना पूरा हुआ, उनकी आस्था को बल मिला। इसके साथ ना सिर्फ एक राम मंदिर की हम बात करेंगे अयोध्या में, बल्कि ऐसा भी हुआ कि राम मंदिर के बनने के बाद से अयोध्या में किस तरह का परिवर्तन आपने देखा?
राम मंदिर की शुरुआत के साथ ही 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, उसके पहले से ही इसकी भावभूमि बनने लगी थी। बल्कि 2014 में जब पहली बार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, तो तभी से अयोध्या की ओर ध्यान दिया जाने लगा सरकार की ओर से, और जो समीक्षक थे उनके भी मन में सवाल था कि ये अयोध्या का मसला हल होगा, और ये उम्मीद थी अंततः कि राम मंदिर बनेगा और अयोध्या को बहुत ही विकसित किया जाएगा। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, तब तक तो भव्य राम मंदिर के साथ अयोध्या को श्रेष्ठतम सांस्कृतिक नगरी बनाने का अभियान छिड़ा। इस अभियान के मुख्य शिल्पी की तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए।
रघुवर जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और महाकुंभ की बात ना हो तो बात पूरी नहीं होती। जिस तरीके से इस सदी के सबसे बड़े आयोजन की बात हम करें, आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में आए, इतना बड़ा आयोजन हुआ, कैसे देखते हैं महाकुंभ के इस आयोजन को?
कुंभ के आयोजन के दरमियान अयोध्या तो बिल्कुल सातवें आसमान पर थी, और उसका सीधा और सबसे बड़ा कारण था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। ये कल्पना नहीं थी कि जो कुंभ के, मुझको लगता है करीब 45 दिनों के दरमियान जो प्रयाग से यहाँ तक एक प्रवाह था श्रद्धालुओं का,
जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ, लोगों की आस्था और संस्कृति का जो संगम था वो प्रयागराज में हमने देखा, बल्कि देश ने नहीं देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। इतना बड़ा आयोजन किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं सरकार की?
हाँ, निश्चित रूप से यह आयोजन भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, यहाँ से जुड़े लोगों को बहुत ही गौरवान्वित करने वाली थी। और सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि एक आस्था के नाम पर, जिस देश की संस्कृति है, परंपरा है, जिसमें ढले लोग, इतनी बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठे होना, इस देश की एकात्मता जो अंदर से देश किसी एक सूत्र में बंधा हुआ है, शायद वो सबसे बड़ी ताकत है किसी देश की, किसी समाज की, इस स्तर पर उस एक सूत्र में बंधे हैं।
प्रोफेसर राजीव, आपसे जानना चाहेंगे हृदय योजना के बारे में, जिसका पूरा नाम है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसे देश के 12 शहरों में लागू किया, जिनमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, बलनकानी, वाराणसी और वारंगल, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो इस योजना पर कितना काम हुआ और जिस तरह से ये हमारे जो प्राचीन शहर थे उनमें क्या बदलाव आया?
देखिए, ये विरासत से जुड़े हुए शहरों के विकास के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2015 में हृदय योजना आरंभ की थी, और इस योजना का मकसद था कि भारत के विरासत शहरों को, उनकी जो खूबियां हैं, जो विशिष्टताएं हैं, उनको दर्शाने के लिए और संरक्षित और पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाए। इसके तहत जो विरासत शहर जिनको घोषित किए गए, जिनका अभी आपने जिक्र किया
जी,
उन शहरों में सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक, सुलभ और सूचनात्मक और एक सुरक्षित वातावरण और पारिस्थितिकी के निर्माण की कोशिश की गई। हृदय स्कीम के तहत जो शहरी विकास योजना है, उसमें आवास और शहरी मामले के मंत्रालय को शामिल किया गया था। सरकार ने इन नगरों में स्वच्छता पर, जल निकासी पर, वहां पहुंचने के मार्ग पर, फुटपाथ पर, बिजली के तार पर, स्ट्रीट लाइट पर, और जो अपशिष्ट प्रबंधन है या पर्यटक से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं हैं, उन सब का ध्यान इसमें रखा था। इस 10 साल में बड़े हद तक सरकार ने इसमें अपने को सफल पाया है, उसके बड़े हिस्से को पूरा किया है।
प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, भारत के आदर्श आयाम, संकल्प, लक्ष्य, पथ और प्रतीक अपने हैं। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा।
आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं, आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं, आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है, ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है।
प्रोफेसर राजीव, हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और पूरे देश ने इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ एक महोत्सव नहीं था, बल्कि इसके जरिए जब पूरे देश में देशभक्ति की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक लहर पूरे देश में चली, हमें अपनी स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे इतिहास के साथ उन अनसंग हीरोज को भी जानने का मौका मिला जिनका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आजादी के अमृत महोत्सव को आप किस तरीके से इस पूरे आयोजन को देखते हैं?
जी देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने को कुर्बान किया, पर जो स्थानीय लोक कथाओं में, समाचारों में ही सीमित जिनको मान लिया गया था, तो उनके प्रति दरअसल यह देश का कृतज्ञता ज्ञापन था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सब जानते हैं, पर उनके ज्यादातर आंदोलनों में गांव के सामान्य स्त्री और पुरुष, किसान, मजदूर, जिन सब ने आजादी का ख्वाब देखा था, उन लोगों ने उसमें भाग लिया था। या आज क्रांतिकारी संगठनों में भी हम कुछ नायकों को जानते हैं, पर जिन लोगों ने अपनी विचारधारात्मक प्रतिबद्धताओं के साथ अहिंसक आंदोलन से इतर रहकर क्रांति के जरिए भारत की आजादी का स्वप्न देखा, वैसे लोग जो स्थानीय स्तर पर ही जिनको जाना गया था और जो उन लोगों के नायक थे, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार की उस योजना ने पूरे देश में उनको पहुंचाया और उन लोगों के प्रति दरअसल हम सब ने, भारत सरकार ने और भारत के नागरिकों ने कृतज्ञता ज्ञापन किया। हमने माना कि उन्हीं सब लोगों की वजह से हम आज हैं। ये इसके साथ साथ यह भी होता है कि अमूमन नायकों की चर्चा तो हो जाती है, पर जिन परिस्थितियों, घटनाओं या जिन लोगों के त्याग और बलिदान के चलते कोई एक व्यक्ति नायक में तब्दील होता है, तो उसके पीछे छूट गए लाखों हजारों लोगों की चर्चा होती है और उनके जीवन के उत्सर्गों को, उनके बलिदान की भावना को, उनके त्याग को हम याद करते हैं और उनके प्रति सर नवाते हैं। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव ने उन जिनको अनसंग हीरोज कहा जाता है, जो लोक गीतों में थे, जो विभिन्न कथाओं में थे, जो वहाँ के स्थानीय परंपराओं में थे, उनको, उनका भौगोलिक विस्तार हुआ, उनके नाम की चर्चा, उनके कर्तृत्व की चर्चा, उनके व्यक्तित्व की चर्चा उनके भौगोलिक क्षेत्र से दूर पूरे भारत के पटल पर आया और भारत के सब लोगों ने अलग अलग इलाके के लोगों को जाना और उनको समझा।
और डॉक्टर प्रसन्ना, अगर हम देखें तो जो परंपरागत कलाएं हैं देश की, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं वहां पे बहुत सारी जनजातीय कलाएं हैं, उनको संरक्षित करने और उनको एक नया अवसर सरकार ने प्रदान किया है, और हम देखें तो उत्तर पूर्व के लिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार का बहुत फोकस है। सरकार ने इसको पिछले 11 वर्षों में किस तरीके से इसे बढ़ावा दिया है?
अभी हम भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का धन्यवाद देने चाहते हैं कि पिछले 11 साल में काफी सारा हमारे जो ट्राइबल, आदिवासी, फिर वो जितने भी है जनजाति के जितने कला है, हम खाली अपने राज्यिक लेवल पे नहीं, ये हमने राष्ट्रपति भवन में क्या है, राष्ट्रपति नीलायम ने क्या है, फिर अभी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पे भी किया है, हमारे जाति जनजाति के जो ट्राइबल आर्ट फॉर्म से उसको हम कर रहे हैं। अब इसी 11 साल में हमें नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये सारे आदिवासी के लिए, उन्हीं के ट्राइबल का फ्रॉम्स, उनका खान पीन, फिर वो कल्चरल आइटम्स, फिर आर्टिफैक्ट्स, ये काफी सारा अभी सरकार ने ये फेस्टिवल्स कर रहे हैं, तो हमें ट्राइफेड से भी, ट्राइबल मिनिस्ट्री फिर ट्राइफेड से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि इस 11 साल में सरकार ने इतने सारे फेस्टिवल्स किया है, ये जितने भी हमारे लोक कला है, हमारे जितने भी ट्राइबल जाति जनजाति के जितने भी कलाकार लोग हैं, इनको एक अवसर मिला है कि नेशनल प्लेटफॉर्म में जाके अपने कला, फिर अपने जो संस्कृति है, अपने जो जितने वे ऑफ लाइफ जो है, अपने जीवन शैली के बारे में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत अभी इतना एक हो गया कि हर प्रांत के लोग अन्य प्रांत के कला क्या है, उनके आर्टिफैक्ट्स क्या है, उनके जीवन शैली ये समझने लग गए हैं और 11 साल में काफी कुछ अभी समझ रहे हैं लोग।
जी, और डॉक्टर प्रसन्ना, जो हमारे परंपरागत इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जनजाति इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन सबको भी एक नया आयाम, सरकार की कोशिश है पिछले एक दशक में कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और एक कार्यक्रम देखने का मौका मिला आपके साथ जिसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को, क्योंकि सारे जितने भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट थे वो सब ओरिजिनल थे, वो सारे उनका उद्गम था वो उसी क्षेत्र से था, तो इसको सरकार किस तरह से प्रमोट कर रही है?
देखिए, अभी हमारे की वैष्णव जनते जो गीत है राष्ट्रीय लेवल पे, जो हमारे सारे भारत के जो परंपरागत देवी वाद्य है, आप अवनद वाद्य, घन वाद्य, तत्व वाद्य, सुशील वाद्य, चारों वाद्यों को लेके देश के हर प्रांत से वाद्य लेके ये गीत में पेश किया गया, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हमारे देश में जितने भी वाद्य है हर वाद्य का एक महत्व है, और इसके ऊपर हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय की जितने भी हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, हमारे साथ जोनल सेंटर से साथ ही क्षेत्र में हम लोग इसके ऊपर म्यूजिकल वर्कशॉप करते हैं ताकि इन वाद्यों को कैसे बनाया जाए, इनको कैसे संरक्षित किया जाए, ताकि न्यू जनरेशन इन वाद्यों को कैसे सीखे, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स लोग है इनके ऊपर जो रिसर्च कर रहे, सरकार की तरफ से इनको आर्थिक जो सहायता भी कर रहे हैं, फिर उनको एककालीन से उनको ग्रांट भी दे रहे हैं ताकि हमारे वाद्य अगर रहेंगे तभी हमारा कला रहेंगे, तभी हमारा कलाकार रहेंगे, यही हमारा आइडेंटिटी है, यही हमारा पहचान है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से, हमारा भारत सरकार की तरफ से जितने भी हमारा कलाकार है इनको आर्थिक अवदान दिया जाता है कि अपने कला को जिंदा रखिए, अपना वाद्य को जिंदा रखिए, अपना वेशभूषा को जिंदा रखिए, ताकि लोग हमारे भारत का कल्चर क्या है, हमारे भारत का संस्कृति क्या है, ये अच्छी तरह से जाने।
जी, और डॉक्टर प्रसन्ना, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सरकार का फोकस रहा है, हमेशा से सरकार ने महत्व दिया है वहां पे, वहां की जो कला और संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं पिछले 11 सालों में?
देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो अष्टलक्ष्मी, जो 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के जो नाम दिया है, तो ये अष्टलक्ष्मी भारत के 500 से ज्यादा जाति जनजाति जितने हैं उससे आधे से ज्यादा उत्तर पूर्व में है। हर जाति की वेशभूषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका वाद्य अलग है, उनकी बोली अलग है। तो हमारे प्रधानमंत्री के एक ही सपना है कि अगर हम पूर्व की तरफ, पूरब की तरफ देखें तो हमको नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही देखना पड़ेगा। तो एक्ट ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये एक उनका जो पॉलिसी है, इसके हिसाब से हमारे उत्तर पूर्व के काफी सारा फेस्टिवल्स अभी दिल्ली जैसे शहर में मना रहे हैं, हम हैदराबाद, बेंगलोर, काफी काफी जगह में ऑक्टेव जैसे फेस्टिवल, ऑक्टेव ये 8 राज्य ऑक्टेव फेस्टिवल हम हर राज्य में हम लोग कर रहे हैं ताकि लोग जाने कि हमारे उत्तर पूर्व की कला संस्कृति क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ही सपना जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये उत्तर पूर्व से भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, विविधता के अमृत महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव, ये सारे को हमारे उत्तर पूर्व के जितने भी कला है, जितने भी हमारे जाति जनजाति को, उनको एक अवसर मिला अपना कला दिखाने के राष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, और जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम रहते हैं तो हमारे कलाकार को मौका मिलता है कि अपने उत्तर पूर्व को छोड़ के भारत के अन्य प्रांत में जाके अपने उत्तर पूर्व के कला और संस्कृति हमको दिखा निकलते हैं। उसके साथ साथ पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से कलाकार को बुला के हम उनको दिखाते कि पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण के कलाकार क्या पहुंचे। तो ये कल्चरल एमलगेशन, कल्चरल जो मोजाइक है, जो फ्यूजन है, हम सब भारतीय है, सब एक है, हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री के जो सपना है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। और प्रधानमंत्री जी के हमारे उत्तर पूर्व के कलाकार को बहुत सारा मौका मिल रहा है कि अपना कला को कैसे जिंदा रखे, कैसे हमको टूरिज्म के हिसाब से अगर हमारा कला संस्कृति रहेंगे तो हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बढ़ावा मिलेंगे। तो यही एक हमारा अवसर है कि हमारा अपना उत्तर पूर्व को कैसे सुंदरता, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य नहीं सांस्कृतिक सौंदरता भी हम जिंदा रख रहे हैं।
जी डॉक्टर प्रसन्ना, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ सांस्कृतिक सुंदरता अष्टलक्ष्मी के जरिए, ऑक्टेव फेस्टिवल के जरिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए, विविधता का अमृत महोत्सव के जरिए, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए, विभिन्न प्रकार से भारत सरकार का पूरी तरह से प्रयास है कि जो कला और संस्कृति है देश की इसको बढ़ावा दिया जाए और जो विविधता में एकता है हमारी, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको एक सूत्र में पिरोया जाए। पिछले 11 सालों में सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की कला और संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराया है। देशवासियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया, बल्कि पुरातन और आधुनिकता के संगम ने पूरे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाकर लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया। और आकाशवाणी से आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 11 वर्षों के दौरान विरासत और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे संस्कृति मंत्रालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NEZCC के निदेशक डॉक्टर प्रसन्ना गोगोई, कला संस्कृति विशेषज्ञ प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी और पत्रकार रघुवर शरण। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह।